वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महामदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं गौरक्षे गुरवे गौरचन्द्राय भक्तियापरांगमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते शरणम्। मैं सबसे पहले अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्मनिध के लीला प्रविष्टम विष्णु पाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्यपाद बाउल महाराज जी और त्रिविक्रम महाराज जी के चरणों में भी दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात हमारे सतीर्थ त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारीगण वैष्णव वैष्णवीगण सबको यथा योग्य मैं अभिवादन करता हूँ। आज हम लोग कुलियातीत में प्रौढ़माया कला और फिर जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी की भजन कुटी और समाधि में गए। जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी के समाधि के पास में हम लोगों ने ये सब बातें प्रौढ़ कला में प्रौढ़ योगमाया के संबंध में और फिर श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज वैष्णव सारधाम संबंध में हम लोगों ने वहां पर उनकी महिमा बतलाई। तत्पश्चात हम लोग रुद्रद्वीप में गए और वहां का धाम महत्व हम लोगों ने पढ़ा जिसमें ये बतलाया गया कि इस भूमि में नवदीप धाम में शंकराचार्य श्री श्री रामानुजाचार्य विष्णु स्वामी निम्बादित्य सभी वैष्णव आचार्य हुए और यहीं पर चैतन्य महाप्रभु उनकी उनके सिद्धांतों में जो कुछ अपूर्णता थी उसको महाप्रभु जी की कृपा से उनकी आराधना से उन लोगों ने अभावों को पूर्ण करके और तब घर घर प्रचार किया। शंकराचार्य को आदेश हुआ ये आप यहाँ पर प्रचार नहीं कर सकते, मायावाद का स्थान नहीं है, वृंदावन और नवदीप धाम यहाँ पर तुम भक्ति के विरुद्ध एक शब्द भी मत कहना। इस भूमि को प्रणाम करके महाप्रभु की कृपा लाभ करके तुम अन्यत्र प्रचार करना, किंतु यहाँ पर तनिक भी मायावाद का प्रचार मत। इसलिए शंकराचार्य ने यहाँ आकर के इस भूमि को प्रणाम किया और अपने परम तत्व को, क्योंकि शंकर साक्षात शंकर हैं इसलिए उनके प्रभु कृष्ण ही हैं जानते हैं, किंतु उन्हीं के विशेष आदेश से उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, अन्यथा वो प्रचार नहीं करते। जैसे तैसे कर्मी लोग कामी लोग भोगी लोग कृष्ण की आराधना करके महाप्रभु की आराधना करके उनसे भोग मोक्ष इत्यादि चाहते हैं, उन लोगों से बचाने के लिए भगवान को ये लोग तंग ना करें, कष्ट ना दें। भगवान का कहां विश्राम है, जो भी नाम हृदय न च मदभक्त जत्र है, क्योंकि उनका हृदय निर्मल है, कोई कामना वासना नहीं है, भगवान की सेवा करना है, इसलिए कोई भक्तों के हृदय में विश्राम। इसलिए उन्होंने आदेश दिया हमको गुप्त रखो, कर्मी ज्ञानी जो भी तपस्वियों से हमको छिपा करके रखो, इसलिए उन्होंने मायावाद असत मत का विचार। विशेष करके थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम लोग निर्दया घाट में गए, वही एक तरफ से रुद्रदीप भी है और पास ही में निर्दया घाट, चैतन्य महाप्रभु निश्चिंत होकर के अपनी मैया बूढ़ी को और अपनी प्रिया विष्णु प्रिया जी को त्याग करके निश्चिंत होकर के काठमांडू नगरी में गए और वहां उन्होंने संन्यास लिया। जिस दिन गया से आए तब से अब अध्यापक निमाई पंडित नहीं रहे, पुस्तक में तो जोर लगा दी, बंद कर दिया, अपने गुरु जो पाठशाला के गुरु गंगादास पंडित के कहने पर उन्होंने उत्तर दिया था, अब मुझे कृष्ण के अतिरिक्त किसी की दृष्टि ही नहीं जाती, जितने सूत्र समास इत्यादि जितनी वृत्ति टीका जो भी कैसा मैं कृष्ण को दिया, इसलिए गुरु जी आप मैं नहीं पढ़ा। और फिर अदम भाव में मग्न रहने लगे, कभी सब प्रहरिया भाव, कभी कुछ कभी कुछ। तब कुछ ऐसा कारण हुआ कि इस नवद्वीप में पढ़ुआ लोग आए और महाप्रभु समय ये भावना कर रहे थे जे कृष्ण धूर्त हैं, कृष्ण का भजन नहीं करना चाहिए, गोपियों का भजन करना चाहिए, इसलिए गोपी गोपी कर रहे थे और वो पढ़ुआ सब आए, कहे गोपी को भी क्या कर रहा, कृष्ण कृष्ण नहीं कर सकता। तो महाप्रभु जी को कुछ भावावेश हुआ और एक लठिया ले लिया और उनके ऊपर में मरने के लिए दौड़े, वो सब भाग गए, कहे सती का पुत्र यदि ऐसा कर सकता तो हम कम कम है, हम ही उनको मारेंगे। महाप्रभु ने सोचा कफ को रोग को दूर करने के लिए पिपली खंड,
रोपिलाम पिपली खंड कफ निवारित है, उलोटिया बड़े कफ दुगुण सही,
किंतु वो कफ बढ़ गया, रोग ही बढ़ गया।
पिपली
पिपली एक रोग यह दवा है जिसको चूसते हैं कफ रोग
कफ चला जाता है,
वो दूर कर देता है। महाप्रभु जी कह रहे हैं और मैं इस सबका उद्धार करने के लिए आया, सबको भक्ति प्रदान करने के लिए है और ये युग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा करें जिसे कभी ये जीवन में विरोध न करें, इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया और छोड़ करके चले गए। तब पीछे से उनकी भावना को समझ करके और देखा उनको ऐसे ऐसे भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि बड़े बड़े राजा महाराजा लोग उनके चरण में पदानत होने लगे, देख करके उनको हुआ। और फिर काशी में प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 शिष्यों के साथ में उनके चरण में अनुगत हुए, देख करके इनका स्वप्न टूटा। तब फिर इन लोगों ने समझा महाप्रभु जी की, इस तरह से एक दिन उनको आज आप घर में नहीं रहना चाहिए, संन्यास लेने का निश्चय किया, क्योंकि उनको प्रचार करना था, इसलिए वाये थे। इसलिए उन्होंने एक दिन आगे वो नंदगांव गए, नंदगांव माने ग्वालाओं के गांव पर रुद्रुम में गए, वहां से दूध मंगा, लोगों ने दूध दिया और भाई से श्रीधर इत्यादि से लौकी मंगा, लौकी भिक्षा करके ले आए और सब लोगों ने उनको बड़ा आदर किया, माया से उन्होंने मोहित कर दिया सब, और शाम को लेट करके आए, मैया को दिया, मैया आज लक लकी बनाना, लक माने लौकी और उसमें चीनी दूध कर्पूर और सब दे करके इलायची इत्यादि दे करके लक लकी, जो नहीं खाया वो पछता है, कभी बना करके देखो ये कैसा लगता है भगवान को। वो कहाँ लकलकी बनाया था तो हम लोगों को तो दर्शन नहीं हुआ,
तिरक भाजी ने बनाया के
तो बना करके ठाकुर जी को भोग दिया। और निवाई पंडित जी बड़े चाव से बड़े प्रेम से खाए उसका भोग आरोप। और इसके बाद में जब धीरे धीरे शाम हुई अपना अन्न इत्यादि पूजा पाठ करके आज बहुत दिनों के बाद में आज विष्णु प्रिया जी के यहाँ गए। गया से जब से आए तब से भावाविष्ट रहते, कभी जमीन पर गिरते, कभी हाथ उताश करते। मैया ने सोचा कि मृगी रोग हो गया सब लोग कहने, किंतु श्रीवास पंडित जी आकर बोले नहीं मृगी रोग नहीं, इसका तो कृष्ण का रोग लग गया, तुम चिंता मत करो ऐसा होना पड़े सौभाग्य की बात। सची मैया ने कहा कि यदि तुम नहीं ऐसा करते तो मैं तो प्राण छोड़ देता। सब लोग कहते हैं कि इसको प्यार रोग हो गया है, पागल हो गया है। इसके बाद में आज विष्णु प्रिया देवी के यहाँ गए। आज बहुत दिन के बाद में बड़े प्रेम से केश का संस्कार किया, तांबूल बैठिका उनके यहाँ मुख में दिया और बड़े प्यार से बात करने लगे। उस समय विष्णु प्रिया जी सोचने लगे आज कुछ अद्भुत चीज होना है, आज दो तीन वर्षों से कभी हमसे बातचीत नहीं किया, हमारा मुख नहीं देखा और आज हमसे ये बातचीत करने आ रहे हैं, क्या बात है। मुझे पान बिटिका दिया, श्रृंगार किया और बड़े प्रेम से वार्तालाप करने लगे। ओ आज मैं सवेरे स्नान करने के लिए गई गंगा नदी में तो हमारे पैर में हुचुट लग गई, हुचुट माने ठोकर लग गई और पैर से खून निकला, ये तो ठीक नहीं। इसके बाद में गंगा में स्नान कर रही थी तो विवाह काल का नक वेशा गंगा नदी में गिर गया, बहुत खोजा नहीं मिला। हमने कि आज हमारा न जाने सिर पर क्या होना है, विवाह काल का भी ये नक वेशा भी ये चला गया, आज क्या होगा। फिर सची मैया के यहाँ जाकर के रोने लगी, बहुत रोने लगी, आज न जाने क्या होगा। जैसे कोई प्रदीप हर के या प्रदीप बुझना होता है तो क्या होता है, भप भप और भप करके फिर बुझते हैं। कोनो हर के यदि निपते चाहे ताले की कर भप भप करे अदा करे भप धप करे आप फिर बुझे। आज एक बुढ़ा है हमारे कपाले लिखा है कैनो मैं के स्नेह बच्चे क्यों हमें स्नेह कर रहे हैं, आज श्रृंगार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में महाप्रभु की जोग माया, महाप्रभु जी ने स्मरण किया जोग माया का और जोग माया आकर के इनको सुलाने लग गई, आंखों पर मानो हजार मोने के पत्थर पड़ गए। आंख खोलना चाहती है, जगना चाहती है, महाप्रभु का प्रेरणा लाख भी सुनना चाहती है, किंतु इतना जोग से नींद आई वो अपने को संभाल नहीं सकी, बस वो सो गए। सो जाने के बाद में उनकी तरफ एक बार देख करके और फिर नवदीप धाम को प्रणाम करके अब एकदम निकल पड़े घर से निष्ठुर होकर के। जब दरवाजे पर आए तो देखा कि सची मैया काठ की पुतली की भांति है खड़ी है, समझ रही थी उनको पता लग गया चंद्रशेखर आचार्य ने या नित्यानंद प्रभु जी ने उनको थोड़ी सी भनक दे दी कि आज ये हो सकता है कि निकल करके जाएं स्नान निकल करके जाएं आज संन्यास ले। इसलिए सची मैया दरवाजे पर खड़ी थी किंतु जो माया के प्रभाव से उनकी भी यही दशा हुई, आंख के आंसू सूख गए। कुछ बोल नहीं सकी, लकड़ी के समान एकदम हो गई। महाप्रभु जी ने उनकी चार बार परिक्रमा की और परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके घर से निकल। पासी में जगन्नाथ घाट या निमाई का घाट है। शी काल माघ का महीना, थरारी कम और गंगा में बाढ़ आई, बस उसी रात में 12-1 बजे कि 2 बजे उसी में कूद पड़े झमपदी में। आज झमपदी है, हा कृष्ण बोलते आ नदी मध्य तरंग मध्य चलते चलते आवार कटवा पूर्व पूर्व ना पश्चिम दिखे गंगार पश्चिम दिखे आसे आरो खांति के हा कृष्ण बोलते बोलते कटवाते जान आ सेखाने कटवाते पंडित केशव काष्ट ना केशव भारत तार निवेदन कर ले यानी अपना का छे संन्यास अत्यंत प्रसन्न हो तो के मायावादी बोले मायावादी सन्यास नहीं बटे किंतु मायावादी ना माधवेंद्रपुर संगे कनेक्शन सम्बन्धे जदि ऊपर थी के मायावादी किंतु भीतर थी के परम भक्त तखन महाप्रभु के आदेश दिले गंगा प्रथम जे मुंडन कर दिए और एखने स्नान करे तिलक करे महाप्रभु कहें चाचू चू करके मैंने कैसा घुंघराले बाप बहुत ही खूबसूरत अत्यंत शुद्ध नापी तो देखे आर कांथे लागू आर मुंडन करे ना संध्या समय हो गल संध्या परे सूर्यास्त पर आर सन्यास हो यज्ञ है। महाप्रभु देखल जैसे एकंत होते नापी कमाचे ना तखन योग माया प्रभाव कहा के जो माया प्रभाव ते कर दिए और का करे गुरु का चे गए गुरु के बोलें बोध है जे अपनी की मंत्र दीबें यही मंत्र दीबें ना कि तक तीन काने ते मंत्र दिए ताहके शिष्य कर दिए तार का चे दुखे चलाकी चतुराई तक भगवान आबार के गुरु ये जन प्रथम ताहके शिष्य करे आ शिष्य करे तारपरे तार का ही दिखे गुरु सन्यास मंत्र एटा एक अद्भुत गोपी भाव स्थिर करेगा दियार परे मंत्रणी आबार चलने वृंदावने कुथा है ब्रजन जनंदन श्याम किंतु निमाई चक्करे पड़े निताई चक्करे पड़े जाले पड़े और मायापुरे वृंदावन जेते पार लेना शांतिपुरे के तीन गए और शांतिपुर के निर्विशेष अद्वैत पाद रामानुजे विशिष्ट अद्वैत पाद विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत आज मध्वाचार्य शुद्ध वही दोनों में थोड़ा सा अंतर है। विष्णु स्वामी और मध्वाचार्य वो शुद्ध अद्वैत और ये शुद्ध अभी किसको क्या कहते हैं और उसका कहा क्या उनका तो भेदा भेद द्वैताल वही बात अथवा भेदा और इसमें भी एक एक शब्द में और भी भाग है। मध्वाचार्य का द्वैताद्वैत होने पर उसमें अचिंत भेदा भेदा है और ये रामानुज में भी रामानंदी संभव है। उसी तरह से विष्णु स्वामी में पुष्टिमान बल्भाचार्य का संभव है और क्या रह गया विष्णु स्वामी निम्बादित्य उनमें भी निम्बादित्य में भी नहीं वो किसने लिए हुए हैं नहीं जिसको हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रत्याग कर दिया एकादशी के दिन उन्होंने
हिथहरि वंश
हिथहरि वंश इत्यादि और भी कितने सब भेद प्रभेद हो गए। वो एकादशी के दिन में आए हिथहरि वंश जी गोपाल भट्ट के शिष्य थे तो वो पान खाते हुए आए कहे आज एकादशी के दिन तुमने पान खाया जे प्रभु ये सब भोग लगा था इसलिए उनका भोग मैं कहाँ फेंकूं इसलिए मैंने उनका प्रसाद समझ करके लिया है तो आज अन्न भी लिया था प्रसाद दे करके तो प्रभु वो भी हमने किया भगवान का प्रसाद तो प्राप्ति मात्र भोक्तव्यम इसलिए मैंने प्रसाद भी तो उन्होंने कहा आज तुमने प्रसाद भोग भी अन्न का लिया और रोटी मालपुआ खाया और खीर खाई और इधर में पान भी चबा रहा है जाओ तुम मैं अपने शिष्यत्व से तुमको
किसको किसको
हितहर वंश
और हितहरि वंश
जब त्याग कर दिया तो वो बड़े दुखी हुए और चले गए यमुना के किनारे और वहां पर यमुना में कूद गए और कूद करके प्राण छोड़ दिए गुरु जी त्याग कर दिया। अब हितहरि वंश लोग हमारे संप्रदाय के हैं किंतु हमारा घोर विरोध करने और उन्होंने अपना पृथक संप्रदाय बना करके राधा बल्लभ संप्रदाय और एकांतिक रूप में राधा कृष्ण का मिलन ही है वियोग नहीं है ये प्रचार करने लगे। इसी तरह से हमारे इन संप्रदाय में बहुत प्रकार के विचार हैं हाँ इसलिए वो लोग विरोधी हो गए हमारे गोपाल भट्ट के और हमारे षड गोस्वामी। तो इस तरह से बहुत इतिहास इसके संबंध में सांप्रदायिक विचार हैं। तो आज हम इस संबंध में यदि बोल सके तो अच्छा है। ये जति महाराज है तो थोड़ा सा बोलो तो इस विषय में देखें सांप्रदायिक विचार पंद्रह मिनट से अधिक नहीं सभी लोग पंद्रह मिनट सकल 15 मिनट तक बेसी बोल रहे हैं और मध्य जा बोलवा 15 मिनट में कारण वक्ता बहुत एर पर हमारे चुचुड़ मठर हे के पर्वत महाराज यही सब सिद्धांत संबंधे बोल रहे हैं यहाँ पर आरो लोग सब बोल रहे हैं अच्छा वेदांत ज्योति महाराज सांप्रदायिक विचार सब सुनकर बहुत सुंदर भाव करे आर आर सांप्रदायिक आचार्य गण वस्तु वस्तु परिणाम स्वीकार करिया वैष्णव गण वस्तु ना शक्ति परिमाण बा परिणाम बात शक्ति परिणाम आ उधर से वस्तु ही परिणाम शंकराचार्य कार्य मत खंडन कर वस्तु परिणाम नय जी तार शक्ति जब भगवान सर्वशक्तिमत्ता नहीं है सर्वस्वैच संपूर्ण नहीं है जखन तहार अंश है तखन बोले स्वयं स्वान आ जखन तिनी एमन जोग माया शक्ति ते करे जे ब्रह्म किंतु केवल मात्र तत्स्थ शक्ति निये थाकें तखन तहार अंश से इच्छु विधि नाम अतएव शक्ति शक्ति परिणाम वस्तु परिणाम बाद ऐसा मुझे तत्व हो गभी एक बेसी खंड सुन ले घुमा अतः भक्ति सार महाराज भक्ति वेदांत सार महाराज ही विल स्पीक एज ही लाइक आई डोंट थिंक दैट ही हैज he has
prepared
our notes of Siddhanta. So he can speak on anything. The teachings of Mahaprabhu are anything. So now you should speak.
So in the Navadvipa Bhava Sangha of Srila Bhaktivinoda Thakur, he has described a very wonderful parakram that he has done of Sri Navadvipa Dham. In each place, he has met with some wonderful devotee who has given him various benedictions. And along the way, as he goes throughout the Dham, he is further and further benedicted and blessed. He meets Grandfather Bhishma Dev. He meets the Pandavas, and Draupadi specifically gives him some nice prasadam, she's cooked, rice and green vegetables, and along with blessings. He sees Vyasa Dev and all the sages in the Upanishads gathered to hear Harikatha, Gaurakatha, Gaur Purana. And then he even meets the personification of the impersonal liberation of Nirvana, Devi. And she says she's like an outcast, and he trembles, and he doesn't want to even see her. And when he wakes up, he's with Lord Mahadev, Gopishwar, who also benedicts him, that he will gain entrance into the spiritual kingdom of Radha and Krishna, here in Navadvipa Dham. And then he fully realizes his spiritual body, and is given his service in the spiritual world by Ananda Manjari and Lalita Sakhi. So, reading this description of his parakram, I think we can all see what state our parakram is in. But still, he is going all these places and praying very deeply from the core of his heart to have these darshans and to have these experiences. So we also can come and pray very strongly to the Dham. So in the beginning, Srila Bhaktivinoda Thakur has given some Dham Tattva. Sarva Dham Shiramoni, Sarva Dham Shiramoni. Sandhi Vilas, Shola Prosha Nadavipa, Chidananda Vas. Arvatyutta Deva Rishi Shudhira Vishram Skuruka Nayanamama Navadvipa Dham. Here Srila Bhaktivinoda Thakur says that may my eyes be blessed with the vision of that most excellent of all Dhams, Sarvadham Shiramoni, the crest jewel, money jewel, Shiramoni, the crest jewel of all abodes of the holy Dhams, which is Sandini Vilas, which is this playful sportive ground of Sandini Potsi of the Lord. We learn from Srila Rupa Goswami that Sandini Potsi is Baladev Prabhu himself. And he manifests all sorts of abodes for the Lord's pleasure, including his bed, his shoes, so many paraphernalia. So, we also learn in the next line, Sola Prosha Navadvi, although it appears within 16 by 2 miles, or 32 square miles, this is Chit Ananda Vas. This is the residence of Chit Ananda. So we hear that the absolute truth is Sat Chit Ananda. But what does this mean? The Sat Potency, Sandini Potency, this is Baladev Prabhu, and or Nityananda Prabhu, and we find Chit Ananda. This is the Chit and Hilagini potencies, the Sankhit and Hilagini potencies, or Krishna and Radha, where they live, Vas, Chitananda Vas. Then Sarva Tirtha, Deva Rishi, Shutira Vishram. This Dham is the shelter, Vishram, of Sarva Tirtha, all of the holy places, all the demigods, all the rishis, and Shuki, all the Vedas, all of the scriptures in this Dham. Then he says, Spuruku, Spuruka Nayana Mama, when will my eyes be blessed with this spurti, with this vision of Navadvipa Dham? Then he prays, Matura Mangala Sola Kosha, Prindavan, Goda Navadvipa.
But we can.
Goda Navadvipa Kata, Devuka Nayan, Ekera Prakashadvi, Ekera Prakashadvi, Anadichin Mai, Kapura Vilasa Vede, Shuddha Dhamma Dvai. Then he says, this Mathura Mandala, Vrindavan within the Mathura Mandala, may I also see it, that it is not different from Goda Navadvi, from Navadvi within Goda Vrindavan, and that it is the Ekera Prakash. It is one principle or one manifestation of the Lord's potencies, which has appeared dwi in two features. Why? Prabhura Vilasabe. Because he has different pastimes. So in his pastime as Radha and Krishna or Chitananda, it is Vrindavan. And in his pastimes as Goranitai, it is Navadvi. But actually it is the same abode, appearing in two forms, just for the pleasure of the Lord in his supreme pastimes. Then he describes that these two unlimited, they are anadi and shinmai, they are unlimited and beginningless, and they are pure and completely shuddhadham, they are purely spiritual dhams. But by the Lord's inconceivable potency, achinta shakti, these dhams are made manifest within the purview of this material world and appear to be within a 32-mile, square-mile radius. This is his achinta shakti. We can say, oh, the sandini potency is like that, and the achinta potency, it is like that, and the nanda potency or hiladini potency is like that. And we think, oh, we can understand what these potencies are. But how do they work together? That is inconceivable, achinta. No one can understand. How it is that Baladeva is satisfying Krishna's desires and serving him in one mood. How Radharani is also manifesting her dham and her many abodes of pleasure for Krishna's happiness. And how this is all going on together simultaneously in perfect harmony, it is inconceivable. And then how that unlimited realm will be manifest in this material world, that is also achinta, inconceivable. So Bhaktivinoda Thakur prays that when our senses, or we've been hearing something about the need for following the process of bhakti yoga, shravana kirtana dishya, controlling our senses through applying our senses in the service of the Lord, anyavilasita sunyam, pure devotional service. He says, when our senses will give up their attachment to this material illusion and this material world, then we'll be able to have a vision of the real Dham. How will we get qualified in this way? Then he describes in his fifth verse, Krishna Krishna Bhakta Kripa Yogyata Paran Yogyata Paran Jive Toye Sadhu Sange Labhe Bhakta Jan Jnana Karma Yoga Se Yogyata Nahai Shra what Bhale? Very strong faith. Strong faith in what? Sadhu Sangha. Sadhu Sangha Sarva Shastra Koi. Mata Mata Sadhu Sangha Sarva City Koi. Even one second association with his perfection. So this is Bhakti Vinod's prayer. That he will get Krishna, Krishna, Bhakta Kripa. The mercy of Krishna and Krishna's devotees. Here he describes two kinds of bhaktas. Krishna Bhakta and Bhakta Jan. The Bhakta Jan, that means the ordinary devotees on the sadhaks who are trying to achieve Krishna's higher state of Krishna consciousness, love of Krishna, bhav, ruchi, rati, like that. And but Krishna Bhakta, those who can give that rati in a moment if they're pleased by your endeavor. So I want to thank Srila Gurudev for this opportunity to say a few words from our acharyas like Srila Bhaktivinoda Thakur. And also, I want to thank him and I want to make him a gift this evening. Just as the dons are made apparent in this material world by the inconceivable potency of the Lord, so by the inconceivable potency of Srila Gurudev, we now have a brand new half-hour television show called Govardhan Parakram, which we're going to be showing all over the world on television, with an interview with Srila Gurudev describing the importance of Govardhan Parakram for the whole world. We hope this will be the first of many Parakram movies that we will show for the whole world for Srila Gurudev. Thank you, Srila Gurudev.
অতপর শ্রীমান ভক্তি বেদান্ত পর্বত মহারাজ কিছু হরিকথা বলবেন, বিশেষ করে যদি বলতে পারেন সাম্প্রদায়িক বিচার তত ভালো হয়, না পারলে এমনি হরিকথা বলবেন। বেদান্ত বন মহারাজ মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে দুটি শ্লোকে তিনি বর্ণন করেছেন, প্রয়াস বেশ ভালো উত্তর, আরো স্পষ্ট করে এসবগুলি বলতে হবে, কতগুলি জড়িয়ে যাচ্ছে, জড়ানো উচিত নয়, সুন্দরভাবে তা অভিব্যক্তি হবে। এরপরে আফটার দ্যাট আই রিকোয়েস্ট ভক্তি বেদান্ত আশ্রম ভাড়ায় টু স্পিক সামথিং অ্যাবাউট চৈতন্য মহাপুরু অ্যান্ড হিজ
গরম
again, I offer my most respectful obeisances unto those who feel of my param gurudev,
Siddhartha Krishna Vishnu Parasat Krishna Krishna Chula A.C. Bhaktivedanta Swami Chula Siddhartha Krishna Vishnu Parasat Krishna Krishna Chula Bhaktivedanta Krishna Krishna Krishna. And also my most respectful obeisances again thousands and thousands of times unto the present Acharya Om Vishnu Parasat Krishna Krishna Chula Bhaktivedanta Swami Krishna Krishna. I offer my most respectful obeisances unto all the devotees and devotees of all worshipers and worshippers. So, this evening, I would like to speak on the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, he has explained that after Lord Krishna, he performed his pastimes, and he wound up his pastimes, and went Golok Vrindavan. Then he was thinking that for a long time I have not been a plain bhakti to the people of this particular world. Chira kala nahi koi plain bhakti dan bhakti vina jagatera nahi avastam sakala jagate bore kore vidhi bhakti vidhi bhakti prajpa paite nahi shakti aishvaya gyane shava jagat nishvita aishvaya shikila preme nahi mora mita yuga dhamma prabhatai mo naam sankirtan chariva bhakti diya nachamu. That for a long time, Chirakam Nahi Kori Pray Bhakti Dham. For a long time, I have not given this Pray Bhakti Dham. Srila Bhaktivinoda Thakur, he explains that this material world, without having pure devotees, Pray Bhaktis, traversing, that then it has no values. Just as in this material world, if the sun and moon were not there, then nobody could survive. There would be no value. In the same way, that without availability of praying bhakti, then this world is useless. So, which praying bhakti is Krishna presenting here? Whether that of Vaikuntha, or we see that Krishna, in his pastimes in Dwarka, that though he had left Vrindavan and gone to Mathura, after he went to Dwarka, he was surrounded by so much opulence, 16,108 queens, and there he was manifesting also his opulences, being able to manifest in so many different forms. But still, was Krishna happy? That Rukmini, one of his chief queens, she would say that when Krishna is with me and he's sleeping, but he's crying, oh Shamali, oh Dhavali, oh Arjuna, oh Sridham, and sometimes wetting the pillow and drenching the pillow, he's crying, oh Vishakhe, oh Lalite, and crying and crying and crying. Satyabhama, she says, what to speak of when he's sleeping, that when he's awake, that even his body's in water, but his heart is in Vrindavan. So one time, Narada Muni, Uddhava, and Baladeva, they were by Krishna's bedside. Krishna was unconscious. He was not getting up. They were thinking, how will we revive him? Then it was suggested that Narada Muni, that he would play some bright spoon at the hand. But Narada Muni said, if I play this bright spoon at the hand, then immediately Krishna will rise, and he'll want to go to Vrindavan immediately. So we'll have to prepare. This is very long pastime. But when Narada Muni finally played Raja Vidhani, Krishna, he jumped up. He said, oh, where's my flute? Oh, Narada Muni, what are you doing here in Vrindavan? Oh, Uddhava, what are you doing in Vrindavan? And they prepared his chariot, and getting on his chariot, then he went to Vrindavan. Then he went to Nirvana, and meeting with Srimati Radhika, then his desperation, his pain of being in separation, then this was vanquished. So,
this pray bhakti, this brad bhava, that actually everything is useless. How can I give this to the presence of this world? So he says, Sakala jagat more kore vidhi bhakti. Vidhi bhakti, braj bhava, nahi paiti shakti. That without, by doing vidhi bhakti, that this is not about the shakti, it is not about the potency to invoke braj bhava. So, in fourth chapter, it is explained, praying ras niyas, korite aspadam, rakma bhakti loke, korite pacharam. That Krishna, coming in the form of Chaitanya Mahaprabhu, that he's Rasik Shekhar. So, to be able to taste ras to the highest degree, then he plunders into the heart of Srimati Radhika, and coming with her mood, her love, and her complexion, he comes in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And also, he's come to give Rav Mah Bhakti. Samapaitam, Unota Dwava Rasa Swa Bhakti Sriyam. That he's come himself to taste that. And he's come to give Swa Bhakti Sriyam, the beauty of the love of Srimati Radhika. So how is he giving? Then Srila Krishna Skaraj Goswami explains. Yuga Dham Prabhataimu Nam Sanskirtan. That by performing Nam Sankirtan. But which type of Nam Sankirtan? That Nam Sankirtan imbued with the mood of the Vrishvasis. That he's made a garland, weaving Vraj praying and Nam, and with this garland, then he's garlanding the whole world. So Srila Krishna Kaivalya Goswami, he goes on to quote from Sri Srimad Bhagavatam. Krishna Varnam Vishak Krishnam Sango Pangasta Pashadam Yagai Sankatan Pai Vijanti Visumedasa. That who is Chaitanya Mahaprabhu? Krishna Varnam. That he's come not with a darkish complexion but golden complexion. And Varnam means describe. Describing whom? Krishna. That he's not Sampradayakacharya, Nimbaditya, Ramanujacharya, Madhvacharya, or Vishnu Swami. But he's Krishna, Swami Bhagavan himself, Krishna Varnam. And what he's doing, Krishna Varnam. He's glorifying, he's describing the glories of Krishna. That he's a combined form of Radha and Krishna. And he's getting so much taste, describing the glories of Radha and Krishna. Krishna Varnam, Krishna Krishnam, Sangopangasa Pashadam. That he's coming, not alone, but with his Angas, Lord Nityananda, Advaita Acharya, Upangas, Srivast Thakur and other Vaishnavas, other devotees, and Parishas, Surup Damada, Roy Ramananda, Rupa Goswami, Ramanandas Goswami, and others. And with his main weapon, he's bringing Harinam Sankirtan. That with this Harinam Sankirtan, he's not killing the demons, but rather he's removing all inauspicious qualities which lay within the heart. Chirad Dattam Nija Lukta Vitam. That hidden treasure, which is there in the Loka Vrindavan, that now Krishna is bringing in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sirada Dakam is the Gupta Vikram. So Prema, his praying. How? Through Nam. Praying Nam Amrita. And who he's giving to? Apamana Yogi Vitara Gura. That those who may be very, very simple, who may have no thought, who have performed all types of simple activities, but very, very graciously, this form of Krishna, the combined form of Radha and Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, is coming and is giving this prayer. But what is the qualification? That one may perform all sinful activities, one may be full of so many anattas, but one who has sincerity. So the Gurudev was explaining a few days ago that Lord Nityananda, he was asking Sri Chaitanya Mahaprabhu that in Kali Yuga, the living entities are so simple, so fallen, that how will they be saved? That I see no way of, unless you devise some very, very special plan. And Gurudev said that Sri Chaitanya Mahaprabhu, then he manifested Gauranam and Gauradham. It stated that one may chant Krishna Nam for many, many lives, millions and millions of lives, but to get the goal of Krishna praying, very, that plane. But then Guru Dev gave a qualification. What is the qualification? That one must be serious. That one must not be hypocrite. One must not be delicious. That one must come to the holy dawn, taking shelter of bona fide sadhus and guru, and engaging in Gaur Nam, engaging in Krishna Nam with sincerity, with very deep determination. And in this way, then very quickly, then aparadas, simple activities, they'll go. But if we come to holy dawn, just as in the offenses to the holy name, there's a seventh offense, to commit simple activities on the strength of chanting the holy names. And we think that, oh, that I'm in the holy dawn, this is not being done. And Chaitanya Mahaprabhu, the Lord Nityananda, they're not accepting any offense. Then Gurudev said that this will be like, what? Vajra Lepa. Prabhu, he translated that thunderbolt. But I've heard that this Vajra Lepa is not meaning thunderbolt, but that when you have cement and you have the bricks and you're putting them together, then there's one substance that you put in the middle. And when you put them together, then that substance has such a binding power that you cannot remove it. So if we come to the holy dawn with Buddha hypocrisy, showing one thing outside, that, oh, that I am sannyasi, but inside, then looking here and there, then this will be like Vajra Lepa. That the effect of such hypocrisy is that everything will be completely ruined for lives and lives and lives and lives. So Gurudev is imploring that we have such special opportunity that now in this life we're able to come and engage in Navi Parikrama, in the association of such exalted Vaishnavas, in the association of such a receive elevated soul as our Srila Gurudev, that we should take very, very careful attention and take full advantage. Because practically speaking, if we cannot take advantage of our situation now, then when will we be able to? That such situations coming very rare. If we cannot take now, what chance has we got? So, glories of Navadvipa, that in this Navadvipa, then we have chance to make rapid progress. But we must be very, very serious. That we must take advantage of this situation and we must not let this opportunity go in vain.
आज अभी रात हो गई, हम लोग यहीं पर अपना समाप्त कर रहे हैं आज का. कल के हमारा मायापुर जाओ. कल के सब लोग যেন মায়াপুরে যায়, কেউ এখানে থাকবেন না. শুধু ঠাকুরের রান্না হবে, এখানে থাকলে প্রসাদ পাবেন, এটা বুঝে রাখছে. এই জন্য সমস্ত ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী গৃহস্থ ভক্ত সকলেই মায়াপুরে যাবে. আমরা সেখানে অন্তিম দিনেতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থলী শ্রীধাম নবদ্বীপ যাব. সেখানে শিবাসঙ্গন, প্রভুপাদের সমাধি, চন্দ্রশেখর ভবন, চাঁদ কাজীর সমাধি আদি বহু স্থান আমরা দর্শন. আপনারা সকলেই জানেন, সাবধানে থাকবেন, পাসপোর্ট ভিসা সঙ্গে নিয়ে যাবেন, অলঙ্কার রাখবেন না. কালকে হয়তো অনেক পকেট মার ইত্যাদিও যেতে পারে, এই জন্য খুব সাবধান, ভিড়ও থাকবে খুব. এই জন্য সম্পূর্ণ বিচার করে বৈষ্ণবের আনুগত্যে যেরকম প্রতিদিন কীর্তন কীর্তন করতে আমরা যাচ্ছি, ওই রকম আমাকে যাবে. আর আমরা গঙ্গা পার হওয়ার জন্য ওখান থেকে টিকিট কিনে নিয়ে এসেছি. আপনারা ওই টিকিট সংগ্রহ করবেন. উই হ্যাভ ব্রট বাই টিকিট ফ্রম ফেরি ঘাট, ভেরি ইজিলি ইউ ক্যান হ্যাভ কালেক্ট ফ্রম হিয়ার
ইন দ্য কাউন্টার.
Per head, one rupee, one ticket. Very easily you can get. आप लोग एक-एक टिकट यहाँ से खरीद लेंगे, वहाँ पर उसके दिखलाने की जरूरत हो, और नहीं तो वहाँ पर बहुत देरी लगती है और बहुत भीड़ होती है. इस जन्म अपना सफल टिकट संग्रह कर रहे हैं.
আজকে আমরা এটাই এখানে পেয়েছি।
আর গৌর পূর্ণিমার দিনেও গতকাল 5 জনের টাকা চুরি হয়ে গেছিল বিদেশিদের। ওরা গৌর পূর্ণিমার দিনে,
গৌর পূর্ণিমার দিন আর এই কালকে মায়াপুরের দিনে বহু লোকের পাসপোর্ট, ভিসা, তারপরে অলঙ্কার, পকেট মারি, বহু টাকা সব গুলি চুরি হয়ে গেছে। এই জন্য এইসব কিছু নিয়ে যাবেন না।
গৌর পূর্ণিমার দিনে এখানে তো টাকা পয়সা না নিয়ে,
আর গৌর পূর্ণিমার দিনে তো ভারী ভিড় হয়, পকেট মার আসে, এই জন্য সাবধান থাকে। On God's Purnima, you should be very careful. So many pockets, big pockets coming here and they can take you in this. So be careful. In the guidance of Vaishnava, you should all go doing kirtan and following Vaishnava. Go Brahmanande.